الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور معرفت القرآن کی جلد نمبر 3، یہ ہماری نصاب کی کتاب ہے اس والے کلاس کے لیے. تو اس میں سے ہم ان آیات، جو کہ آیات نمبر 108 سے لے کر کے 113 تک، 108 سے 113 تک ہیں، تو ان کو ہر بات کر پڑھ رہی ہیں. اور پچھلی کلاس کے اندر ہم نے معارف و مسائل اس کے پڑھنے شروع کر دیے تھے اس مجموعہ آیات کے. آج میرے خیال میں ساری دنیا کے اندر ہی 8 ذی الحجہ ہے، اور کل انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہوگی. 9 ذی الحجہ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو اس میں روزہ رکھتا ہے، عرفات کا دن ہے 9 ذی الحجہ، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ بخش دے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اکثر دیندار مسلمان جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کا ضرور سے روزہ رکھتے ہیں. اس سال یا پچھلے ایک دو سال سے کہا جا سکتا ہے کہ ماشاء اللہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، تو ان میں بھی دیندار مسلمانوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا شروع کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے یقیناً. لیکن بہرحال یہ بھی جو ہے وہ مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پسند والی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں بھی احادیث آئی ہیں، اور جو قرآن مجید میں سورہ فجر کی آیت ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، تیسرے پارے کے اندر جو ہے، تو اس میں جو 10 راتوں کا ذکر ہے تو وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں، شروع کی 10 راتیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کی بہت فضیلت آئی ہے. تو فضیلت سے مراد کیا کہ ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان ثواب کے اعمال میں عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ سمجھتے ہیں، کہ نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا، ٹھیک ہے. لیکن ان ثواب کے کاموں میں ایک اور بھی ضرور سے ہماری ڈکشنری میں داخل ہونا چاہیے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنا، سمجھ کے اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے معانی و معارف کو سمجھنا، اور یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. ہمارے پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، وہی کہہ رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، کہ ہم کیا چیز سوچیں، کیا چیز سمجھیں، اور کیا چیز اپنے عمل میں لے کر کے آئیں. تو بلا شبہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں شامل ہے. بلکہ حقیقت تو اگر اس کو اور ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو بہت ہی بنیادی اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں شامل ہے. اس لیے کہ یہی علم حاصل کرنا ہے، اور جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، روح پیدا ہوتی ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے، बगैर इल्म के अमाल करने में नहीं होती है। ठीक है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी का अल्फ आबिदिन, कि जो समझ रखने वाला एक शख्स होता है वो शैतान के ऊपर 1,000 बगैर समझ के इबादतें करने वाले से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, तो उसकी वजह यही होती है कि समझ के काम करने वाला जो है ना, उसको उसको बहकाना शैतान के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। समझ के काम, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म करना या मुराद नहीं है, बल्कि समझ मुराद है, फिका। तो हम जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो वो समझ ही की खातिर पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए शैतान के मुकाबले में एक बहुत ही मजबूत ढाल बनाएगा, और इससे हमारे जो नफली अमाल भी हो रहे हैं, फराइज तो हमारे पक्के होंगे, सबसे पहली चीज तो फराइज है, और फिर उसके बाद जो नफली अमाल हैं उनको भी शैतान से बचाना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, अच्छा, मारूफ मसाइल हमने जो शुरू कर लिए, तो शुरू के सिर्फ हमने दो ही लाइनें पढ़ी थी कि वो हम दोबारा पढ़ेंगे। जाहिर है मजकूरा आयात में जो मुफ्ती शफी ने फरमाया कि मजकूरा आयात में से पहली आयत एक खास वाकये में नाजिल हुई है, और इसमें एक अहम उसूली मसले की हिदायत दी गई कि जो काम खुद करना जायज नहीं तो उसका सबब और जरिया बनना भी जायज नहीं है। ठीक है, इसके बारे में काफी शाफी बात पिछली क्लास में हो गई थी कि हम आज के दौर में काफी इस किस्म की गलतियां करते हैं, खुसूसन सोशल मीडिया पे बैठ करके, कि हम ऐसी चीजों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं सेंड का बटन दबा करके, जो कि शरीयत की रूह से जायज नहीं होती हैं, जो कि गुनाह का सबब होती हैं। तो जब हम उनको आगे भेज देते हैं तो फिर हम उन लोगों के गुनाह का सबब बन रहे होते हैं जिनको हमने वो चीजें फॉरवर्ड करी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए जायज नहीं है। जुमे का जो दर्स था वो भी उसमें भी हमने यही वाले पैसेजेस पढ़े थे बार कुरान में से, तो उसमें भी हम ये बात दोबारा डिस्कस कर चुके थे। आगे फरमाते हैं कि आयत का शान नुजूल इब्ने जरीर की रिवायत के मुताबिक ये है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मुहतरम यानी चचा अबू तालिब मरतुल मौत में थे, तो कुरैश के मुशरिक सरदार जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और ईजा रसानी में लगे हुए थे और कत्ल की साजिशें करते रहते थे, उनको ये फिक्र हुई कि अबू तालिब की वफात हमारे लिए एक मुश्किल मसला बन जाएगी, क्योंकि उनके बाद अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे, अगर उनके बाद हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे तो ये हमारी इज्जत और शराफत के खिलाफ होगा, कि लोग कहेंगे कि अबू तालिब के सामने तो उनका कुछ बिगाड़ ना सके, उनकी मौत के बाद अकेला पाकर कत्ल कर दिया, इसलिए अब वक्त है कि हम मिलकर खुद अबू तालिब ही से कोई फैसला कुन बात कर लेते हैं, या इन अदर वर्ड्स बात करवा देते हैं। ठीक है, ताकि मसला जो है ना वो अभी खत्म हो जाए। मसला क्या था? मसला जो है ना वो ये था, क्या सिर्फ ये था मसला? क्या था मसला? सिर्फ ये था कि नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते थे पिछली क्लास के, हमने के पिछली क्लास के अंदर ना हमने इसके ऊपर कुछ बात करी थी, अम्मियों से बात करी थी, है ना, अम्मियों मदर्स, राइट? तो उस बात की रोशनी में जो पिछली क्लास में आपके साथ करी थी, अगर आप हमें इस सवाल का जवाब दें कि मसला क्या था। जी, कुछ याद आता है पिछली क्लास से? मसला क्या था मक्का मुकरमा के अंदर, सारा का सारा क्या मसला था? और ये हम किससे सवाल पूछ रहे हैं? वैसे तो सभी से पूछ रहे हैं, कोई भी जवाब दे सकता है, लेकिन आपको हिंट के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि हम अम्मियों से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ये एक हिंट है जवाब देने के लिए। तो मक्का मुकरमा में क्या मसला चल रहा था? यानी ऐसा मसला चल रहा था कि कत्ल कत्ल की नौबत आ गई थी ना, कत्ल की नौबत है ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना। अच्छा, एक मिनट, अच्छा मसला क्या चल रहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं हम जुमे के दर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछली क्लास की, पिछले पीर की क्लास की बात कर रहे हैं, जुमे के दर्स की बात नहीं कर रहे। आपने जो जवाब दिया ना वो जुमे के दर्स से जवाब दिया, हम पिछले पीर की क्लास की बात कर रहे हैं। क्या मसला था भाई? मुश्किल सवाल है। हाँ, बच्चा वालिदैन को बड़ा ना माने, अपने फायदे की बात भी उनसे ना ले। ठीक है, तो हाँ चले, कम से कम आपको ये तो याद आ गया कि हमने अम्मियों से क्या बात करी थी ना, कि अम्मियों को हमने उनके अम्मी वाली मिसाल को इस्तेमाल करते हुए बात समझाई थी कि ये जो ईमान 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 ये अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद के अंदर बार बार यही चीज इन्हीं आयात में जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये कस्में खाते थे अल्लाह ताला की, बड़े जबरदस्त तरीके से कस्में खाते थे कि अगर हमारे सामने निशानी आ जाएगी तो हम ईमान लेकर के आ जाएंगे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें तो इस बात का शऊर नहीं है कि ये लोग फिर भी ईमान नहीं लेकर के आएंगे, और ये पहले भी ईमान नहीं लेकर के आए थे। ईमान ईमान ईमान, तो भाई ये ईमान चीज क्या है? ठीक है, ईमान चीज क्या है? तो ईमान यही है, ठीक है, ईमान यही है कि बात मानना, ठीक है ना। अम्मिया है ना, अम्मिया 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 जब जाती है ना किसी खानदान के बुजुर्ग के पास अपने बच्चों को लेकर के, तो वो कहती हैं इनसे ये जो है ना, ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा कहना नहीं मानता, ये कहने का लफ्ज है ना, ये तो पिछली क्लास में मुझे याद नहीं आया था। ठीक है, तो बात नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। ठीक है, तो सारा का सारा मसला क्या था? कहना ना मानने का, है ना भाई, अम्मियों का अंदाजा है ना, कहना ना मानने का इतना बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो ईमान लाने का मतलब क्या होता है कि नबी का कहना मान ले। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को सारा का सारा मसला क्या था इन लोगों के साथ कि ये कहना नहीं मानते, हालांकि मैं नबी हूं, मैं सादिक हूं, मैं अमीन हूं, मुझे सादिक तो मानते हैं, मुझे अमीन तो मानते हैं, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। जैसे अम्मी जाकर के किसी से शिकायत करें कि ये मेरा बेटा है ना, ये मुझे अम्मी तो मानता है लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानता। ठीक है, तो ये था सारा का सारा मसला जो कि नबी अलैहिस्सलाम को इनके साथ था, और जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, तो अल्लाह को भी इनके साथ यही मसला था कि ये मेरे नबी का कहना क्यों नहीं मानते, ये मेरे नबी का कहना क्यों नहीं मानते। ठीक है, और इन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या मसला था कि जिसके जिस मसले की वजह से कत्ल की साजिश शुरू हो चुकी थी, कत्ल की साजिश है ना, मारपीट तो पहले ही हो रही होती थी, मारपीट तो पहली कर रहे थे, कभी जो है वो दो बंदों को जो जो मुसलमान होते थे उनको जो है वो रस्सी से बांध देते थे, कभी जो है वो उनको अजीब वो गरीब किस्म की टॉर्चर किया करते थे। ठीक है ना, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हो या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जंगजू सिपह सालार हो, उनकी भी पिटाइयां किया करते थे। ठीक है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनका कहना नहीं मानना, हमने हमने इनका कहना नहीं मानना, ये हमें कहना छोड़ दें, ये हमें कहना छोड़ दें। जैसे बेटा जो है वो माँ के खिलाफ हो जाए कि अम्मी जो है ना वो, मैं इनको अम्मी तो मानता हूं लेकिन ये मुझे कहना छोड़ दें, और अम्मी जो है वो कहना ना छोड़ना चाहें, अम्मी कहना ना छोड़े, और ये बेटा कहें ये मुझे कहना छोड़े, हत्ता कि ये ना हो बता जाए कि बेटा जो है वो फिर माँ के कहने से तंग आकर के माँ के कत्ल की साजिश शुरू कर दे, ये ना हो बता जाए कि माँ के कत्ल की साजिश शुरू कर दे, क्यों? ताकि माँ जो है ना वो उनका कहना बंद हो जाए। ये है ना, बकती रहती हैं बकती रहती हैं बकती रहती हैं कि बकने को मैं कैसे खत्म करूं, इनको कत्ल ही कर दो ताकि ये बकना छोड़ दें। ठीक है ना, आजकल अमेरिका वगैरह में तो कर भी देते हैं अपनी माओं को कत्ल, अमेरिका वगैरह में इससे तो बड़ी खबरें आ रही है ना आजकल, बढ़ गई हैं सारी खबरें आना, माँ को कत्ल कर दिया, बाप को कत्ल कर दिया। ठीक है, अल्लाह रहम करे, हम भी उनके पीछे पीछे तो चले चले जा रहे हैं। भागे चले जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। पता नहीं कब हमारे यहाँ से आती तो है, हमारे यहाँ से भी आ जाती है एक आध कभी कभी इस तरह की खबरें, ठीक है। ये इनकी तादाद हमारे यहाँ भी बढ़ ना जाए, कि माओं को कत्ल करने के वाकयात बढ़ ना जाए हमारे यहाँ भी कहीं, जिस तरह अमेरिका में पहले बढ़ चुके हैं। जाहिर किसी के पीछे जाएंगे तो जाहिर फिर सारी चीजें मिलेंगी ना उसी की, अल्लाह रहम करें हमारे ऊपर, तौबा कर लें। बहरहाल तो ये सारा का सारा मसला था ना, तो इस मसले की वजह से फिर इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की हरकतें शुरू कर दी थी। और उनको मसला यह था कि अब अबू तालिब अगर दुनिया से चले जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर हम उनको कत्ल करेंगे ना तो हमारी तो नाक कट जाएगी, ठीक है ना। ये अजीब, कत्ल कत्ल करने का मसला नहीं है, नाक कटने का ज्यादा मसला है, ठीक है। कत्ल करने का मसला नहीं है, मसला किस चीज का है, नाक का, ठीक है। ये नाक होती ऐसी चीज है। तो फरमाते हैं कि ये बात तकरीबन हर लिखा पढ़ा मुसलमान जानता है कि अबू तालिब अगर से मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि अजमत व जलालत भी उनके दिल में पैवस्त थी, और आप की दुश्मनों के मुकाबले में सीना सबर रहते थे, आप को सपोर्ट करते रहते थे, और यानी फ्रंट लाइन बन गए थे कि बस नहीं, पहले मुझे तुम मारोगे, फिर उसके बाद जो है वो नबी मेरे मेरे भतीजे तक तुम पहुंच सकोगे। इस तरह से इनका एक किरदार रहता था। चंद कुरैशी सरदारों ने ये मशवरा करके अबू तालिब के पास जाने के लिए एक वफद मुरतब किया, जिसमें अबू सुफियान, अबू जहल, अमर बिन आस वगैरह कुरैशी सरदार शामिल थे। अबू तालिब से इस वक्त की मुलाकात के लिए वक्त लेने का काम एक शख्स मुत्तलिब नामी के सुपुर्द को, उसने अबू तालिब से इजाजत लेकर इस वक्त को वहां पहुंचा दिया, अबू तालिब के पास उनको पहुंचा दिया कमरे में। वहां जाके कमरे में फिर वफ्द ने अबू तालिब से कहा कि आप हमारे बड़े और सरदार हैं, पूरा खानदान ही मक्का मुकरमा में बहुत ही ज्यादा शर्फ वाला था, ये जो बनु हाशिम बल्कि बनु अब्दुल मुतलिब जो खानदान था जिसके के ये अबू तालिब जो थे वो इस वक्त बड़े थे। तो कहा कि आप तो बड़े हमारे बड़े और सरदार हैं, और आपको मालूम है कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और हमारे माबूदों को सख्त तकलीफ और ईजा पहुंचा रखी है। हम चाहते हैं कि आप उनको बुलाकर समझाते हैं। ये सौ यहाँ पे जो है वो गलत दिखा गया है। हम चाहते हैं कि आप इनको बुलाकर समझा दें। अबू तालिब के लिए आपका लफ्ज इस्तेमाल है, तो गलती से प्रिंटिंग हो जाता है कि वो शायद सौद आपके ऊपर लिखा गया है। तो इनको बुलाकर आप समझा दें कि वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहें, तो हम इस पर सुनो कर लेंगे कि वो अपने दीन पर जिस तरह चाहे अमल करें, जिसको चाहे माबूद बनाए, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। तो अपने काम से काम रखो भाई, ये चाहते थे खाली, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो मसला जो है ना वो ये नहीं था कि ये अपने काम से काम रखने के ऊपर भी मुतमईन थे, ये इस पर भी मुतमईन नहीं थे, ठीक है। वरना तो ये दूसरे मुसलमानों को क्यों तकलीफ देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग का जब काम शुरू किया, ठीक है, और लोगों को कहा कि भाई तुम लोग जो है वो बुतों की परस्तिश छोड़ दो, तुम लोग जो है वो मुसलमान यानी मेरा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ लो, तो ये बातें कौन कह रहा था, ये तो नबी अलैहिस्सलाम ये बातें कह रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इससे कुछ लोग जो है ना नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और मुसलमान हो गए, ठीक है। अब वो जो लोग जो मुसलमान हो गए थे तो उनमें चलो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो थे ना वो तो ऐसे थे कि फौरन दूसरों को भी उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी और दूसरों को भी मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, है ना। ये तलहा रतान, जुबैर रतान, अबू उबैदा बिन जर्रा रतान, और भी बहुत सारे लोग जो है वो अबू ये अबू बकर रतान के बुलाने पर मुसलमान हुए, ठीक है। लेकिन ये जो दावत और तबलीग का काम था ये बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला तो नहीं करते थे, ठीक है, ये बिलाल हबशी रजान तो नहीं करते थे, तो उनको ये लोग क्यों मारते थे, बिलाल हबशी को क्यों मारते थे, ये जो सुमैया रजान और अम्मार ये उनके उनके शोहर यासिर रजान, ठीक है। तो इनके बारे में तो ये नहीं हमें पता चलता कि ये भी जो है वो लोगों को दावत तो तब्दील क्या करते थे, तो फिर भाई इनको इनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते थे, ठीक है, इनको इनके हाल पे छोड़ देते ना, क्यों इन्होंने सुमैया रजान को कत्ल किया। क्यों इन्होंने जो है वो यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया और बिलाल रज़ी अल्लाह को ऐसी ऐसी अजियतें दी, उनको उनके हाल पे छोड़ देते ना भाई, ठीक है तुम नहीं हमारे बुतों की पूजा करते हो तो ना करो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो हकीकत क्या थी कि ऐसा नहीं था कि अपने काम से काम रखो तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इनको तो उन लोगों से भी तकलीफ थी कि जो अपने काम से काम रखते थे, इनको तो उनसे भी तकलीफ, ठीक है ना, लेकिन वो कमजोर थे ना तो उनको इन्होंने मारना शुरू कर दिया, और जो थोड़े से इस्टेब्लिश किस्म के लोग थे तो उनको इतना नहीं मार सकते थे जितना जो है वो छोटों को मारते थे, ठीक है। अब यहां पर जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहें तो हम इस पर सुलह कर लेंगे, वो तो बड़ी यानी एज अ लास्ट रिजोर्ट वो ये बात कर रहे हैं, यानी तंग आकर के मजबूर होकर के वो ऐसी सुलह की शराइत पेश कर रहे हैं कि अगर जो है ना वो आप अपने काम से काम रखेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वरना इनिशियली ये ऐसे नहीं थे, ये इस सुलह के लिए तैयार नहीं थे कि तुम अपने काम से काम रखो हम भी अपने काम से काम रखेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारे माबूदों को कुछ नहीं कहना, शुरू में तो ये इसके लिए भी तैयार नहीं थे, शुरू में तो इनको इसी बात से तकलीफ थी कि ये हमारी हमारे तरीके पे क्यों नहीं चल रहे हैं। वो तो जब बाद में इतने सारे लोग मुसलमान होने शुरू हो गए, ठीक है, और उन्होंने देख लिया कि नबी अलैहिस्सलाम का जो काम है ना ये तो बढ़ता चला जा रहा है, तब सुलह करिए, तो सुलह जो है ना वो तो एज अ लास्ट रिजोर्ट उन्होंने करी है ना, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको वाकई कोई मसला नहीं था अपने काम से काम रखने में, नहीं ऐसा नहीं, इनको मसला था, ठीक है, कि तुम जो है वो हमारे बुतों की परस्तिश क्यों नहीं कर रहे हो, इनको इससे मसला था, ठीक है। तो इस जुमले की वजह से ना गलत फहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है इन लोगों के बारे में, ये बड़े अच्छे जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे लोग थे, जैसे आजकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये होता है ना, बजाय बजाय ये होता है कि तुम अपने काम से काम रखो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, नहीं ये लोग तो उनसे भी नहीं सख्त है ना। तो अब इन्होंने ये प्रपोजल पेश किया कि भाई ठीक है तुम जो चाहो करो बस हमारे माबूदों को पुराना करो, वैसे ये प्रपोजल पेश किया था, लेकिन अगर खुदा ना खासा जाहिर ऐसा होने वाला नहीं था, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम उनकी ये शर्त मान लेते, अगर ठीक है ना बिलफर्ज, हम खाली बात समझने के लिए बात कर रहे हैं, वरना ऑफकोर्स ऐसा होने ही वाला था, नबी अलैहिस्सलाम की बात मान लेते, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम इनकी बात मान लेते और ये सुलह हो जाती, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम अपनी इबादत करते रहते और ये लोग जो है वो अपने तरीके पे चलते रहते, तो उसके बाद क्या होना था, उसके बाद क्या होना था, ये कोई आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये सुलह हो जाती और नबी अलैहिस्सलाम अपने काम से काम रखने शुरू कर देते और ये लोग अपने काम से काम रखने शुरू कर देते तो उसके बाद क्या होने वाला था, ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता, नहीं वक्त असल में क्लास तो बहुत कम है तो जवाब का मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता, उसके बाद ये होना था कि शायद चंद दिन तो ये सुलह कायम रहती, शायद शायद बोल रहे हैं, चंद दिन तो ये सुलह कायम रहती और ये नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को बॉदर करना छोड़ देता, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर लॉन्ग, ज्यादा दिन तक ना इनसे बर्दाश्त नहीं होता ये कि ये लोग जो है वो हमारे मुल्क में हमारी शहर में रह रहे हैं और ये हमसे हट करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बस ज्यादा इनसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर उन्होंने दोबारा से जो है वो चढ़ जाना था मुसलमानों के ऊपर, दोबारा से मुसलमानों को अजियतें देनी शुरू कर देनी थी, दोबारा से जो है ना वो मारपीट शुरू कर देनी थी, कत्ल वगैरह शुरू कर देना था, ठीक है। तो ये सुलह के जो है ना ये भी एक बस एक मजबूरी की बात थी और इसने भी जो है ना वो आगे कायम रहना ही नहीं था। अच्छा तो नहीं पता नहीं आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये मुझे दो चार एक्स्ट्रा बातें आप लोगों के सामने करेंगे। तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और कहा कि ये आपकी बरादरी के सरदार आए हैं, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफ़ से मुखातिब होकर फरमाया कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें और हमारे माबूदों को छोड़ दें, बुरा भला ना कहें, ठीक है, और हम आपको और आपके माबूद को छोड़ देंगे, इस तरह बाहमी मुलाकात खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी उन्होंने माशाल्लाह अच्छी बात लिखी यहाँ पर कि लाइक दे ब्रोक द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। हुदैबिया के अंदर भी तो सुलह हुदैबिया में यही बातें होती है ना कि तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखो रखेंगे, ठीक है। तो इस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का क्या अंजाम हुआ, थोड़े दिन के बाद बिलाखिर उन्होंने खुद ही जो है वो तोड़ दिया, ठीक है। बनू खुदाज अलबन था ना वो, जो कि इनका एक हलीफ कबीला था, उसने जो है वो अटैक कर दिया, इन्होंने जो है वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी, सुलह हुदैबिया, वो खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक जो है वो मुसलमानों को पूरा एक मुल्क मिल चुका था, रियासत मदीना कायम हो चुकी थी, ठीक है। तो उस वक्त फिर सुलह हुदैबिया को तोड़ देने से मुसलमानों का कोई खास तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हो गया, ठीक है। लेकिन मक्का मुकरमा में तो मुसलमानों के पास कोई भी पावर नहीं थी ना, कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी ना मुसलमानों के पास। तो वहां पर अगर ये सुलह हो जाती तो थोड़े दिन के बाद जब ये उस सुलह को तोड़ते ना, तो फिर तो मुसलमानों की इन्होंने ईंट से ईंट बजा देनी थी उसके बाद, ठीक है। तो ये नेचर होती है ना, ये ना पहले जो है वो इनको इस बात पे इत्मीनान था कि हमसे हटके क्यों कर रहे हैं ये लोग बातें, और ना जो है वो बाद में इत्मीनान होने वाला था कि हमसे हट करके ये लोग अपना काम क्यों कर रहे हैं। तो ये ऐसा चलता नहीं है, डजेंट वर्क लाइक दैट, ठीक है ना। और हकीकत ये है कि जिस तरह उनको इस बात पर इत्मीनान नहीं था कि ये लोग जो है ना वो हमारे दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हकीकत क्या है कि जो ईमान वाले होते हैं उनको भी इस बात पर इत्मीनान नहीं होता कि दूसरे लोग जो है वो हमारे दीन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, जो हकीकत में ईमान वाले होते हैं। हकीकत में, हमारी बात नहीं हो रही, हकीकत में जो ईमान वाले होते हैं ना उनको भी इस बात पर इत्मीनान नहीं होता कि काफिर जो है वो हमारे दीन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे से मुराद यहाँ पर अल्लाह का दीन, काफिर अल्लाह के दीन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। जिस तरह काफिर को इस बात पे इत्मीनान नहीं होता कि मुसलमान काफिर के दीन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी तरह मुसलमान को भी इस बात पर इत्मीनान नहीं होता कि काफिर जो है वो दीन इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। अपनी बात की थोड़ी कर रहे हैं हम, हमें तो बहुत इत्मीनान है, हमें तो बहुत इत्मीनान है, हमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई ना करो तुम हमारा दीन को फॉलो, हमें भी कोई मसला नहीं है, हम तो अपने जिंदगी में खुश हैं, हम तो अपने पराठे खाने में और बिरयानियां खाने में और अपने जो है ना वो इबादतें करने में और चक्करें लगाने में और टक्करें मारने में और रोजे रखने में और नमाजें पढ़ने में हम बहुत खुश हैं, ठीक है। कोई दूसरा कोई जहन्नुम में जा रहा हो, दूसरा कोई जो है वो काफिर हो, कोई काफिर हो के पैदा हो, कोई काफिर हो के मरे, हमें कोई परवाह नहीं है इस बात की। हमारे तो रोजे चल रहे हैं ना, जिलहज्जा के भी, रमजान के तो माशाल्लाह चलते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अगर रमजान के रोजे चलते हैं, क्योंकि वो तो फर्ज है, लेकिन हमारे तो जिलहज्जा के भी रोजे कजा नहीं हो रहे, हम खुश हैं भाई, हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है ना। लेकिन ये धोखा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई दीन मुकम्मल नहीं हुआ, कोई दीन मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है ना। दीन तो उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब के परेशानी लग जाए कि मैं भी दीन में हूं कि नहीं हूं, इस बात की भी परेशानी लग जाए और दूसरे बंदे के लिए भी परेशानी लग जाए कि वो क्यों नहीं है दीन के अंदर, उस वक्त तक दीन मुकम्मल हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो फरमाया कि उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें और हमारे माबूदों को छोड़ दें, बुरा भला ना करें, और हम आपको और आपके माबूदों को छोड़ देंगे, इस तरह बाहिमी मुखालफत हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लूं तो क्या तुम एक ऐसा कलमा कहने के लिए तैयार हो जाओगे जिसके कहने से तुम सारे अरब के मालिक हो जाओ और अजम के लोग भी तुम्हारे ताबे और बाजगुजार बन जाए। ऐसा कलमा तुम्हें मैं बताने वाला हूं, हालांकि कोई पहली दफा कोई थोड़ी है, पहले सलाह उनको बता रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपना काम शुरू ही इस कलमे से किया था, ठीक है ना। लेकिन आप ने ना उसको प्रेजेंट एक डिफरेंट तरीके से इस दफा किया है, प्रेजेंट एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, वरना कलमा तो भाई पहले दिन से बता रहे थे हम लोगों को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा तमहीद बांधी आप तमहीद बांधी ना। तो अबू जहल बोला कि ऐसा कलमा एक नहीं, हम 10 कहने को तैयार। ये बेवकूफ समझ रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से कोई जादू का कोई कलमा बताना है मुझे, हमें बताना है कोई है? वो कुछ जादू का कलमा हम पढ़ेंगे तो जो है ना वो सारे अरब भी हमारे ताबे हो जाएंगे और अजम भी हमारे सारे ताबे हो जाएंगे। तो फौरन बोला जल्दी हम 10 10 दफा वो जादू का कलमा पढ़ लेंगे, ठीक है, बताइए वो क्या है। आप सब फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई माबूद समझे जाने के लायक सिवाय एक अल्लाह के, सिवाय एक जात के जिसका नाम अल्लाह, ठीक है। इन्होंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, ये तो वही पुरानी स्टोरी शुरू कर दी इसने, है ना, ये तो वही पुरानी स्टोरी शुरू कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ठीक है। तो सुनते ही फिर गरम हो गए, बरहम हो गए। अबू तालिब ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरे भतीजे इस कलमे के सिवा कोई और बात करो, ये तो मैं पहले ही तुमसे सुनता आ रहा हूं, ये तो ये लोग पहले ही तुमसे सुनते आ रहे हैं भाई, ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट, है ना, मार्केट में कोई नई चीज लेकर के आओ ना, कोई एक्साइटिंग किस्म की कोई प्रपोजल लेकर के आओ तुम, ये क्या तुमने जो है वो ये अपना पुराना प्रपोजल के मेरे ये प्रोडक्ट खरीद लो, है जैसे पठान वाला लतीफा सुन लिया ना अब तक तो सबने, इंशाल्लाह नहीं तो ना बेटा बच्चा था ये बेचारा। हम मजाक में कहते हैं कभी हम जो है वो बिहारी का मजाक कर रहे होते हैं, कभी जो है पंजाबी का मजाक हो रहा होता है, कभी पठान का मजाक, ये मजाक की बात है खाली, ठीक है ना। असल में कोई पठान को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो सबके चलते हैं। तो वही था वो बच्चा था एक, तो बहरहाल नहीं, लेकिन वो लतीफा बिल्कुल भी हम सुनाना नहीं चाहिए क्योंकि आपने मेरे सास में बात करी है। लेकिन बात कहने का मकसद क्या कि हम चाहते हैं कि कोई नई चीज आ जाए ना, कोई एक्साइटिंग किस्म की, बिल्कुल ही कोई वो कुल्लू जदीद लजीज उन, आजकल वो मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम का आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो उसमें तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि ये जो मुसलमान जो है ना वो जिद्दत पसंदी का शिकार हो गए थे, तो उसकी वजह जो है ना वो सिर्फ एक ही समझ में आती है, वो क्या है कि कुल्लू जदीद लजीज, हर जदीद चीज जो होती है ना वही लजीज होती है, हर जदीद चीज लजीज होती है, ठीक है। तो ये इंसान का नफ्स नफ्स ऐसा ही है कि उसको हर हर मरतबा कोई नई चीज चाहिए होती है, कोई नया टेस्ट चाहिए होता है, कोई नई। तो ये भी सारे नफ्स के मारे हुए लोग थे, तो ये तो नई चीज के इंतजार में बैठे थे कि हाँ हमें कोई नया कलमा मिलेगा, लेकिन नबी अलैहि सलाम ने पुरानी बात ही कर दी इनके सामने, ला इलाहा इल्लल्लाह, गुस्सा हो गए है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान मैं तो इस कलमे के सिवा कोई दूसरा कलमा नहीं कह सकता, ठीक है ना, मैं इनके नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई थोड़ी आया हूँ हर मरतबा इनको कोई नई एक्साइटिंग चीज जो है वो बताता रहूं, नहीं भाई मेरे पास तो एक यही है, ठीक है। अगर वो आसमान से आफताब को उतार लाए और मेरे हाथ पे रख दे, जब भी मैं इस कलमे के सिवा कोई दूसरा हरगिज नहीं कहूंगा। मकसूद ये था कि इनको मायूस कर दें, यानी इनको कह दें कि यहां से चले जाएं, ठीक है, क्योंकि दीन की बुनियाद बल्कि कामयाबी की जो फाउंडेशन है ना वो तो ये कलमा तौहीद ही है, ला इलाहा इल्ला, यही है। आप किसी दूसरी फाउंडेशन के ऊपर कामयाबी बिल्ड कर ही नहीं सकते, कामयाबी की इमारत आप किसी दूसरी बुनियाद के ऊपर बना ही नहीं सकते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कि अगर ये बुनियाद नहीं है तो आप कितनी ही खूबसूरत इमारत बना लें, उस इमारत का कोई फायदा है ही नहीं, उससे आपको कामयाबी मिलेगी नहीं। कितनी खूबसूरत इमारत बना लें लेकिन अगर उसके फाउंडेशन पे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है तो वो कामयाबी की इमारत हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो बात तो यहीं से शुरू होगी और यहीं से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो हकीकत यही है, बाकी शैतान जो है वो ज़ाहिर है झूठ बोलता है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, इसके बगैर ही तुम जो है वो हज करके आ जाओ, हर साल हज कर लिया करो, तुम कामयाब हो जाओगे, है ना। सबसे मुश्किल वाली इबादत जो आजकल की है वो हमने मिसाल के तौर पर पेश करी, तुम हर साल हज करके आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर बेशक तुम्हारे नीचे जो है ना वो कलमे की बुनियाद नहीं है ना, फिर भी तुम्हारी कामयाबी पक्की है। झूठ है बिल्कुल, ये 100% शैतान का झूठ है। तुम हर साल जो है वो जिहाद करने के लिए चले जाओ, ठीक है ना, तुम्हारी कामयाबी तो यानी अर्श तक पहुंच जाएगी तुम्हारी कामयाबी। हर साल जिहाद कर लिया करो, तुम्हारी कामयाबी अर्श तक पहुंच जाएगी, ये झूठ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर नीचे बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की नहीं है, तो हर साल तो क्या, हर दिन भी तुम अगर हज करते हो ना, फिर भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। पता नहीं कौन से सैयारे की बातें कर रही है बैठ करके, जिहाद और हज को उन्होंने ऐसे जो है वो झाड़ू से झाड़ू फेर दिया, जिहाद के ऊपर भी और हज के ऊपर भी। कौन से सैयारे की बातें कर रहे हैं, कौन सी जुबान के अंदर ये बातें कर रहे हैं। वजह सारा का सारा वजह सारी की सारी यही है कि हमें पता ही नहीं है कि ये कलमा है क्या, हमें पता ही नहीं है तौहीद किस चीज को कहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि शिर्क क्या चीज होती है। हालांकि करते हैं मुस्तकिल वही काम शिर्क, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या चीज होती है। तो जब शिर्क का पता नहीं, तो फिर तौहीद का भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। तौहीद, तौहीद तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको तो आप इसके जिद को समझे बगैर समझ ही नहीं सकते कि तौहीद क्या चीज होती है। अशियाओ तो रखो भी अजदा देहा, तो ये उन अशिया में से है जो कि जिद से समझ में आती हैं, उसके बगैर ये समझ में नहीं आती। तो तौहीद वन ऑफ देम। चले आगे चलते हैं कि इस पे ये लोग नाराज होकर कहने लगे कि या तो आप हमारे माबूदों को बुरा कहने से बाज आ जाइए, वरना हम आपको भी गालियां देंगे और उस जात को भी जिसका रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बताते हैं। इस पर आयत नाजिल हुई, वला तसुब्बुल लजीना यदउन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। यानी आप इन बुतों को बुरा ना कहें कि जिनको उन्होंने खुदा बना रखा है, जिसके नतीजे में वो अल्लाह ताला को बुरा कहने लगेंगे अपनी बेराहरवी और बेसमझी से, ठीक है। तो अच्छा, ये इनके यहां मसला ये नहीं था कि इनको लफ्ज अल्लाह का पता नहीं था, ठीक है। तो अब जो है वो ला इल्मी की वजह से जो है वो अल्लाह, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि अल्लाह जो है वो तो हमारे खालिक का नाम है, तो इस वजह से ये अल्लाह अल्लाह नाऊद बिल्ला बुरा है, अल्लाह जो है वो ये है, अल्लाह जो है वो है, क्योंकि इन ये तो खालिक को किसी और नाम से पहचानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, ये खालिक को अल्लाह के नाम से ही पहचानते थे, है ना। काबतुल्लाह को जो है वो बैतुल्लाह कहते थे ना, कोई और तो नहीं कहते, बैतुल अनकबूत तो नहीं कहते थे काबतुल्लाह को, मकड़ी का बैतुल अनकबूत कुरान मजीद के अंदर है, तो काबतुल्लाह को ये बैतुल्लाह कहते थे ना, तो अल्लाह ही को तो खालिक मानते थे, तो अल्लाह को बुरा भला कैसे कहेंगे। तो उसके लिए फिर ये तावील ये करते अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हम उस वाले अल्लाह की बात की थोड़ी कर रहे हैं जिसका के घर मक्का मुकरमा के अंदर है, बल्कि हम तो उस वाले अल्लाह की बात कर रहे हैं कि जिसको ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कहते हैं, हम तो उस वाले जो कि इनके नजदीक झूठा, हकीकत में वो अल्लाह नहीं है जिसको के ये मोहम्मद अल्लाह कहते हैं, हकीकत में तो वो अल्लाह है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो ये तावील बनाना होता है अपनी बेवकूफी की। तो ये इस तरीके से फिर अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है ना भाई, अल्लाह तो ये कोई थोड़ी है कि जिसको वो अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह नहीं है, जिसको ये अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह है, अल्लाह तो एक ही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को तो ये बात पता है कि मैं तो एक ही हूं, राइट। तो ये अपने दिमाग में कोई भी तावील बना करके लफ्ज अल्लाह को अगर बुरा भला कहेंगे, तो वो मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। तो इनका बड़ा गरक हो जाएगा इसके बाद, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा मामला इनके लिए। तो इस वजह से ये ना करें, ठीक है। तो अब यहां पर आगे बड़ी जबरदस्त उन्होंने तहकीक लिखी है कि इसमें ना ये ला तसुब्बु का जो लफ्ज है ना, इसका मतलब क्या है कि तुम बुरा भला ना कहो। ये तो हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, बुरा भला ना कहो, लेकिन इसकी हकीकत क्या हमें समझ में आ रही है। तो उसको फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने आगे क्लेरिफाई किया है कि भाई जो ला तसब्बु का लफ्ज है ना, ये सब्बा से मुश्तक है, सब्बा लफ्ज से डिराइव्ड है, ठीक है, जिसके मानी है गाली देना, ठीक है, गाली देना। गाली देना जो है ना, ये आम बुरा भला कहना नहीं होता, बल्कि ये बुरा भला कहने की एक्सट्रीम फॉर्म होती है, जिसको गाली देना कहते हैं, ठीक है। फोहश कोई कलमा हो उसको भी गाली देना कहते हैं, और कोई बहुत ही गलीज किस्म की कोई बात बंदा कोई करे ना, तो उसको उसके लिए गाली का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यू आर नॉटी किसी को कह दिया, तो वो नॉटी का लफ्ज है ना, वो गाली में नहीं आता, हालांकि नॉटी भी जो है वो बुरा भला ही कहना है, ठीक है ना। यू आर सो बैड, ये भी बुरा भला कहना है, लेकिन ये गाली तो नहीं कहलाता ना। यहां पर भाई गाली की बात हो रही है, इसको हम अपनी जुबान में गाली कहते हैं, ठीक है ना। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने फितरी अखलाक की बिना पर पहले ही इसके पाबंद थे, कभी बचपन में भी किसी इंसान बल्कि किसी जानवर के लिए भी गाली का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर जारी नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये क्यों हुआ, अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो उसका जवाब देते हैं कि मुमकिन है कि बाज़ सहाबा कराम की जुबान से कभी कोई सख्त कलमा निकल भी गया हो, जिसको मुशरिकीन मक्का ने गाली से ताबीर कर लिया, और कुरैशी सरदारों के इस वफ्द ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस मामले को रख कर ये ऐलान कर दिया कि आप हमारे बुतों को सब्बो शतम करने से बाज ना आएंगे, तो हम आपके खुदा को सब्बो शतम करेंगे, ठीक है। जैसे कहने वाला जो है ना, वो उसके तो जहन में भी नहीं होता कि मैं गाली दे रहा हूं, लेकिन उसने कोई सख्त बात कह दी होती है, लेकिन अगला बंदा पहले जो है ना, वो कहते हैं ना, तुला बैठा हुआ है लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो जो लड़ने के लिए तुला बैठता है ना, तो वो फिर इस कलमे को, जो कि गाली इसने नहीं दी थी लेकिन बस एक सख्त बात इसने कही थी, उसी को बहाना बना करके वो आगे लड़ाई शुरू कर देता है। तो ये लोग तुले बैठे हुए थे किसी तरीके से, मुसलमानों से लड़ाई का बहाना मिले और मारे ही मुसलमानों को, तो इस तरह का भी मामला मुमकिन है कि हुआ हो, ठीक है, कि किसी सहाबी ने ऐसी कोई सख्त बात कह, गाली से साहब ही ने बना दी हो, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया उन्होंने। तो इस पर कुरानी हुक्म ये नाजिल हुआ कि जिसके जरिए मुसलमानों को रोक दिया गया कि वो मुशरिकीन के माबूदात बातिला के मुतालिक कोई सख्त कलमा ना कहा करें, सख्त कलमा से मुराद यहां पर गाली, कोई गाली ना दिया करें। इस आयत में ये बात खास तौर से काबिल नजर है कि इससे पहली आयत में खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हो रहा था, मसलन इरशाद है, इत्तबे मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, कि आप अपने रब की तरफ से जो वही आप पर की गई है उसकी इत्तबा करें, तो डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम को खिताब था। और आरिफ अनिल मुशरिकीन, और आप मुशरिकीन से जो है ना वो इग्नोर करें उनको, और मा जअलनाका अलैहिम हफीजा, हमने आपको जो है वो इनके ऊपर हफीज बना बना के नहीं भेजा, वमा अंता अलैहिम बेवकील, और आप इनके ऊपर वकील नहीं है। तो डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से पिछली आयात के अंदर अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे थे। इन तमाम सीगों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब थे कि आप ऐसा करें या आप ऐसा ना करें। इसके बाद इस आयत में तर्ज खिताब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेर कर आम मुसलमानों की तरफ कर दिया गया, एकदम से वाहिद का सीगा जो है वो जमा के सीगे में तब्दील कर दिया गया, आप सब लोग ऐसा ना करें, है ना, पहले आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, अब जो है वो एकदम से आप सब लोग ऐसा ना करें, फरमाया ला तसुब्बु। तो इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी को गाली दी ही नहीं थी, उनको बराह रास्त इस कलाम का मुखातब बनाना उनकी दिल शक्नी का सबब हो सकता है, इसलिए खिताब आम कर दिया गया और तमाम सहाबे कराम भी इसमें एहतियात फरमाने लगे। यानी इस किस्म की कोई गलती जो है वो नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम की जमात से हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम से नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस पे अगर सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता तो आप सज़र की दिल शिकनी होती, ठीक है। और एक तो और भी इससे मानी निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक अंदाज में एक तरह से देखा जा सकता है कि बदनामी भी होती, कि भाई जैसे नबी अलैहिस्सलाम मना कर रहे हैं, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो गाली देने का काम ना आप ने किया ना आप की शान के मुताबिक था। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली कहा जाता कि आप गाली ना दें तो दिल शिकनी भी होती और बदनामी भी होती कि नबी होते हुए ऐसा काम क्यों कर लिया भाई इन्होंने, कैसे कर लिया इन्होंने। तो अल्लाह ताला ने ना सीगा ही तब्दील कर दिया, ठीक है, प्लूरल का टेंस इस्तेमाल कर लिया ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए पढ़ने वाले को कि यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की जात मुराद ही नहीं, उनसे खिताब हो ही नहीं रहा, बल्कि ये तो पूरी जमात के साथ खिताब हो रहा है मुसलमानों की। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 41 हो गए। तो बस ये हम यहाँ पे एक दो लाइनें डेढ़ लाइनें बढ़ के रह गई तो पढ़ लेते हैं कि रहा ये मामला कि कुरान करीम की बहुत सी आयात में बुतों का तذکرہ सख्त अल्फाज में आया है और वो आयात मनसूख भी नहीं है, उनकी तिलावत अब भी होती है। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं कि तुम बुतों को गालियां ना दो, तुम लोग बुतों को गालियां ना दो, ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला ने खुद जो है वो कुरान मजीद के अंदर बुतों के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगरचे को जाहिर है गालियों वाले अल्फाज तो नहीं है लेकिन सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना। ठीक है, तो फिर मुसलमानों को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से क्यों रोका जा रहा है? भाई जब अल्लाह ताला कोई काम करेंगे तो जाहिर है मुसलमान वही काम करना चाहेंगे जो कि उनके परवरदिगार ने किया, ठीक है ना। हत्ता के ये तो हदीस में क्या है वो अल्फाज, तखल्लकू बे अखलाक, कि अपने आप को अल्लाह के अखलाक से मुजयन करो। अल्लाह के अखलाक से मुजयन करने का मतलब क्या है कि भाई जैसा अल्लाह ताला करते हैं ना वैसे तुम भी करो, ठीक है। तो अगरचे के उसका मफहूम जो है वो रहमत में और शफकत में और इन चीजों में, तुम अल्लाह ताला के अखलाक अपने अंदर पैदा करो, माफी में जैसे अल्लाह ताला माफ कर देने में आप बढ़े हुए होते हैं उसी तरह अपने अंदर भी तुम माफी की सिफात पैदा करो, ठीक है। लेकिन कोई कोई सोच सकता है कि भाई अल्लाह ताला के और भी सारे अखलाक हमें अपनाने चाहिए, तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को बुरा भला कहा है तो हमें भी उनको बुरा भला कहना चाहिए। तो उसकी फिर तफसील समझा रहे हैं कि नहीं, अल्फाज से तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हें हर किस्म के काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन इसकी तफसील है कि नहीं, हर किस्म के काम तुम नहीं कर सकते, हर किस्म के काम तुम्हारे लिए जायज नहीं है, बल्कि कोई कॉन्टेक्स्ट है इसका, कोई इसकी तफसील है, कोई इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको समझो और उसके ऊपर तुम्हारा कर। जैसे है ना कि भाई कुरान मजीद जो है वो अगर हम खाली अल्फाज से समझना चाहें तो हमें बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है, कि बस कुरान मजीद के अल्फाज को हमने सुन लिया और कहा कि इसका यही मतलब है जो हमें समझ में आ रहा है, तो भाई बहुत जगहों पे आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, कुरान मजीद को उसकी तफसीर के साथ समझेंगे तब बात समझ में आएगी ना, ठीक है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला के अखलाक को तुम अपनाओ तो इसके अंदर भी तफसील है, तो इसकी तफसीर को समझना पड़ेगा तब तफसील समझ में आएगी और तब तुम अल्लाह ताला के अखलाक जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए रेलेवेंट है तुम उनको अडॉप्ट करो, और जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है उन अखलाक तुम अडॉप्ट करने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो है वो तफसील आ रही है इस सवाल की, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। बुध को ईद का दिन है इंशाल्लाह, तो जाहिर है बुध के दिन की क्लास नहीं होगी, लेकिन अगले पीर को, इस वक्त तक इंशाल्लाह ये छुट्टियां वगैरह मुकम्मल हो चुकी होंगी, तो अगले पीर ही को फिर हम अब अपनी अगली क्लास करेंगे जो कि दसवीं की क्लास होगी। अल्लाह ताला जो है हमने पढ़ा सीखा अल्लाह ताला उसको हमारे हक में हुज्जत बनाए और उसको समझ करके उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।